नमस्कार, आज हम सब मिलकर बात कर रहे हैं डेविड फॉस्टर वॉलेस के टेनिस पर लिखे कुछ कमाल के निबंधों के बारे में। ये एक किताब में जमा है जिसका नाम है स्ट्रिंग थ्योरी।
हाँ, और ये सिर्फ टेनिस के स्कोर या खिलाड़ियों की रैंकिंग की बात नहीं है,
है ना?
बिल्कुल नहीं।
वॉलेस तो टेनिस को जैसे एक आईने की तरह देखते हैं, जिसमें वो मतलब इंसान की उत्कृष्टता की जो तलाश है,
हाँ,
या फिर प्रतिभा क्या है, दबाव में कैसा प्रदर्शन होता है, सुंदरता, यहाँ तक कि आध्यात्मिकता भी उसकी झलक दिख जाती है।
एकदम। ये तो जैसे खेल के मैदान से शुरू होकर जिंदगी के बड़े सवालों तक पहुंचने की कोशिश है।
और आज के जमाने में तो ये और भी जरूरी लगता है, जहां हर तरफ परफॉर्मेंस और एक्सेलेंस की बात होती है।
सही कहा। तो चलिए इस दुनिया को थोड़ा और समझते हैं।
और इसे समझने के लिए डेविड फॉस्टर वॉलेस से बेहतर कौन हो सकता है? मतलब 1962 से 2008 तक का उनका जीवन अपनी पीढ़ी के सबसे जबरदस्त अमेरिकी लेखकों में से एक माने जाते थे।
हाँ, खास तौर पे उनका वो उपन्यास इन्फिनिट जेस्ट, वो तो बहुत ही मशहूर हुआ।
उनकी खासियत थी कि वो मुश्किल विचारों को भी बड़ी सहजता से, ईमानदारी से और कभी कभी तो मजेदार ढंग से भी पेश करते थे।
बिल्कुल। लेकिन टेनिस पर लिखने की उनकी काबिलियत सिर्फ किताबी नहीं थी।
सही बात है, वो कोई बाहर बैठकर सिर्फ कमेंट्री करने वाले नहीं थे।
नहीं, वो खुद अपनी जवानी में एक ठीक ठाक टेनिस खिलाड़ी रहे थे, रीजनल लेवल पर खेले भी थे।
अच्छा,
हाँ, तो उन्हें कोर्ट की गर्मी, वो मांसपेशियों का दर्द, जीत हार का एहसास, ये सब पता था, अंदर से जानते थे।
वो अकेलेपन का एहसास भी जो कोर्ट पर होता है।
वही। और जब उन्होंने इस निजी अनुभव को अपनी तेज बुद्धि और कमाल के लिखने की स्टाइल से मिलाया, तो नतीजा तो असाधारण होना ही था।
हाँ, मतलब वो एक खिलाड़ी की तरह भी सोच सकते थे और एक फिलोसोफर की नजर से भी देख सकते थे।
और परफेक्शनिज्म, वो हर चीज बिल्कुल सही करने की धुन और उसका जो दिमागी बोझ होता है, उसे भी वो शायद निजी तौर पर समझते थे। इसीलिए वो एथलीटों के अंदर के संघर्ष को, उनकी साइकोलॉजी को इतनी गहराई से पकड़ पाए।
तो ये किताब स्ट्रिंग थियरी, ये असल में है क्या?
ये असल में वॉलेस के पांच सबसे जाने माने टेनिस निबंधों का कलेक्शन है। 1991 से 2006 के बीच लिखे गए थे ये।
पांच निबंध, तो हर एक अपने आप में अलग होगा?
हाँ, हर निबंध की अपनी दुनिया है, लेकिन सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं।
और वो बड़ी तस्वीर क्या है? उसका मतलब सेंट्रल आइडिया क्या है?
मेरे ख्याल से वॉलेस ये दिखा रहे हैं कि टेनिस कोर्ट एक छोटी सी दुनिया है, जहां जिंदगी के बड़े बड़े ड्रामा चलते हैं, उम्मीदें, सीमाएं, अनुशासन, अकेलापन।
और कभी कभी सुंदरता के वो पल जो हैरान कर देते हैं।
बिल्कुल। वो खेल को आंकड़ों और नतीजों से ऊपर ले जाते हैं। वो पूछते हैं कि महानता क्या है? क्या सिर्फ जीतना ही महानता है,
या उस रास्ते में भी कुछ महान है?
हाँ, और जब हम किसी को कुछ असाधारण करते देखते हैं, तो वो हमें इतना क्यों छू जाता है?
तो ये किताब टेनिस लवर्स के लिए तो है ही।
हाँ, पर उससे कहीं ज्यादा ये उन सबके लिए है जो इंसान की क्षमता, उसकी हदें और ये जो उत्कृष्टता या एक्सेलेंस की बात हम करते हैं, उसे समझना चाहते हैं।
चलिए, तो फिर इन निबंधों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। पहला कौन सा है?
पहला है डेरिवेटिव स्पॉट इन टोर्नेडो एली। इसमें वॉलेस अपने बचपन की बात करते हैं। इलिनॉइस में थे, जहां बहुत तेज हवा चलती थी।
टोर्नेडो एली, नाम से ही लग रहा है।
हाँ, तो वो बताते हैं कि उन्हें टेनिस का वो ज्योमेट्री वाला ढांचा, वो लाइनें, नियम, वो सब पसंद था। एक लॉजिकल दुनिया।
लेकिन हवा, हवा तो सब गड़बड़ कर देती होगी।
बिल्कुल। वो एक अनिश्चितता थी, अराजकता। लेकिन मजे की बात यह है कि वॉलेस ने सीखा कि उस हवा से लड़ने के बजाय उसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें।
अच्छा, ये तो जिंदगी का सबक लग रहा है।
है ही, अनियंत्रित चीजों से कैसे निपटा जाए, यहीं से उनका खेल से वो पर्सनल कनेक्शन दिखता है।
इसके बाद
पर वॉलेस फौरन एक बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं।
कि क्या महान खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को शब्दों में बता सकते हैं, समझा सकते हैं?
हाँ, और वॉलेस का मानना है कि अक्सर नहीं।
क्यों भला?
क्योंकि जो चीज उन्हें महान बनाती है, वो शरीर की अपनी समझ, वो बिजली की तेजी वाला फैसला, कोर्ट को महसूस करने की क्षमता, वो शायद भाषा की पकड़ से परे है।
इसीलिए एथलीटों की किताबें कई बार थोड़ी मतलब क्लीशे लगती हैं, घिसी पिटी बातें।
हाँ, वही कि हम बस एक बार में एक गेंद पर ध्यान दे रहे थे।
हाँ,
है ना? तो ये भाषा की सीमाओं और टैलेंट के रहस्य पर कमाल की टिप्पणी है।
फिर वो हमें माइकल जॉस की दुनिया में ले जाते हैं। निबंध का नाम कुछ प्रोफेशनल आर्टिस्ट्री जैसा था।
हाँ, टेनिस प्लेयर माइकल जॉयस प्रोफेशनल आर्टिस्ट्री। जॉयस कोई मतलब फेडरर या नडाल जैसे सुपरस्टार नहीं थे, वो टॉप 100 में बने रहने के लिए संघर्ष करने वाले खिलाड़ी थे, जर्नीमैन जिन्हें कहते हैं।
अच्छा,
तो यहाँ वॉलेस चमक दमक से हटकर उस बेहिसाब मेहनत और अनुशासन को दिखाते हैं जो टॉप पर न रहने वाले खिलाड़ियों की सच्चाई है।
शारीरिक दर्द, पैसे का दबाव, लगातार ट्रैवल करना।
हाँ, और वॉलेस कहते हैं कि असली कलात्मकता, शायद हीरोइज्म भी, सिर्फ नंबर वन बनने में नहीं बल्कि इस मुश्किल संघर्ष में टिके रहने में है, रोज अपना बेस्ट देने में भले ही दुनिया ध्यान ना दे।
ये तो उस अदृश्य काम का सम्मान है जो अक्सर हम देखते ही नहीं।
बिल्कुल, हम अक्सर सिर्फ विजेताओं को याद रखते हैं ना।
सही बात है।
माइकल जॉयस जैसे खिलाड़ियों का संघर्ष हमें जमीन से जोड़े रखता है।
एकदम।
और फिर जमीन से थोड़ा ऊपर उठकर चौथा निबंध है डेमोक्रेसी एंड कॉमर्स एट द यूएस ओपन। इसमें वॉलेस दिखाते हैं कि आज का बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट कैसा होता है।
यूएस ओपन, वो भव्य माहौल, शोर शराबा और पूरा कमर्शियल सेटअप।
हाँ, वो कॉरपोरेट लोगो, मीडिया की भीड़, महंगे खाने पीने की चीजें, दर्शकों का हल्ला गुल्ला। वॉलेस सवाल करते हैं कि इस सबके बीच खेल का असली अनुभव कहाँ है।
क्या ये अब भी सिर्फ खेल है या एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है?
ये खेल और पूंजीवाद के रिश्ते पर एक तीखी नज़र है, सोचने पर मजबूर करती है कि जो कमर्शलाइजेशन है, ये हमारे अनुभवों को कैसे बदल रहा है।
और फिर आता है आखिरी निबंध, शायद सबसे मशहूर, फेडरर वाला।
हाँ, फेडरर बोथ फ्लैश एंड नॉट, जिसका असली टाइटल था रॉजर फेडरर एज रिलीजियस एक्सपीरियंस। और यहाँ वॉलेस जो कह रही हैं वो टेनिस से कहीं आगे की बात है।
वो कहते हैं कि फेडरर को उनके पीक पर खेलते देखना सिर्फ खेल देखना नहीं था, एक तरह का धार्मिक अनुभव था। ये तो बड़ी बात है।
हाँ, वो फेडरर मोमेंट्स की बात करती हैं, ऐसे पल जब फेडरर कुछ ऐसा कर जाते थे जो फिजिक्स के नियमों से परे लगता था।
जैसे कोई जादू।
हाँ, एक जादुई संगम ताकत, नजाकत और स्टाइल का, कुछ अलौकिक सा। वॉलेस इसे काइनेटिक ब्यूटी कहती हैं।
काइनेटिक ब्यूटी यानी गति में सौंदर्य।
बिल्कुल, मानव शरीर की गति में छिपा सौंदर्य। ये सिर्फ फेडरर की तारीफ नहीं है, ये इस बात की खोज है कि कैसे इंसान की उत्कृष्टता हमें हैरान कर सकती है, हमें एक उदात्त अनुभव दे सकती है।
खेल कैसे कला बन सकता है।
हाँ, ये निबंध हमें प्रदर्शन की सुंदरता पर ध्यान देना सिखाता है, ना कि सिर्फ हार जीत के स्कोर पर।
इन निबंधों से गुजरते हुए कई जरूरी विषय सामने आते हैं, जैसे एक तो ये उत्कृष्टता का मनोविज्ञान।
हाँ, वॉलेस बार बार दिखाते हैं कि टॉप लेवल पर खेल सिर्फ शरीर का नहीं, दिमाग का भी है, जबरदस्त मानसिक लड़ाई,
दबाव झेलना, फोकस बनाए रखना, हार से सीखना, ये गुण तो सिर्फ कोर्ट पर नहीं, जिंदगी में भी चाहिए।
बिल्कुल, और एक और पहलू है, अकेलापन और जुड़ाव। बेहतरीन बनने की चाह अक्सर खिलाड़ी को अकेला कर देती है, घंटों अकेले प्रैक्टिस, सारा प्रेशर खुद पर।
लेकिन वही खेल दर्शकों से जोड़ता है, कभी कभी विरोधी से भी एक अनकहा रिश्ता बन जाता है।
हाँ, और शायद सबसे गहरा रिश्ता तो खिलाड़ी का अपने खेल से, अपने प्रदर्शन से बनता है।
और वो किनेटिक ब्यूटी वाली बात, वो तो दिमाग में रह जाती है, हमें लगता है सुंदरता सिर्फ आर्ट या म्यूजिक में।
लेकिन वॉलेस दिखाते हैं कि इंसान के शरीर की गति, उसका कौशल, उसकी लय, उसमें भी गहरा सौंदर्य हो सकता है, बस हमें उसे देखना सीखना होगा।
शायद अगली बार क्रिकेट या फुटबॉल देखते हुए हम सिर्फ स्कोर नहीं, खिलाड़ियों की मूवमेंट पर भी गौर करें। ये अच्छा पॉइंट है।
और संघर्ष का सम्मान, ये भी एक बड़ा संदेश है, खासकर माइकल जॉयस वाले निबंध से।
हाँ, ये याद दिलाता है कि सफलता के कई रंग हैं, लगातार कोशिश करना, अपनी सीमाओं के बावजूद हार न मानना, इसमें भी एक शान है, एक सुंदरता है।
ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है जो खबरों में नहीं है पर अपना काम पूरी लगन से कर रहे हैं।
और प्रतिभा की प्रकृति वाला सवाल जो ट्रेसी ऑस्टिन वाले निबंध से उठा था, क्या हर टैलेंट को समझाया जा सकता है?
शायद नहीं, वॉलेस यही कहते हैं हमें अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस का सम्मान करना सीखना होगा, कुछ लोग करके दिखाते हैं, कुछ बोलकर या लिखकर,
दोनों का अपना महत्व है।
बिल्कुल, और आखिर में खेल और बाजार का वो रिश्ता, यूएस ओपन वाला निबंध।
हाँ, वो हमें थोड़ा सजग रहने को कहता है, चाहे हम खेल देखें, फिल्म देखें या कुछ भी।
ये सोचना कि हम जो अनुभव कर रहे हैं वो कितना असली है और कितना बनाया हुआ, प्रायोजित।
तो इस पूरी बातचीत में कुछ विचार हैं जो बार बार आ रहे हैं। एक तो ये कि टेनिस या कोई भी हाई लेवल खेल जिंदगी का एक छोटा मॉडल जैसा है।
हाँ, उसमें जिम्मेदारी है, दबाव है, गलतियां हैं और बेहतर बनने की लगातार कोशिश।
और ये कि इंसान जब अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता के शिखर पर होता है तो वो नजारा कला जैसा सुंदर हो सकता है, वो काइनेटिक ब्यूटी।
लक्ष्य भले जीतना हो पर प्रक्रिया सुंदर हो सकती है।
फेडरर के बारे में वो बात भी सोचने वाली है कि उनकी वो अमानवीय लगने वाली क्षमता असल में उनके गहरे मानवीय गुणों का नतीजा थी।
हाँ, जैसे समर्पण, क्रिएटिविटी, दबाव में शांत रहना, ये इंसान की संभावनाओं की हद दिखाता है।
और कैसे टॉप खिलाड़ी खेल को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया की तरह देखते हैं, उसकी अपनी फिजिक्स, अपनी ज्योमेट्री।
किसी भी चीज में मास्टरी के लिए शायद ऐसे ही डूबना पड़ता है।
वॉलेस टीवी पर खेल देखने के हमारे अनुभव पर भी सवाल उठाते हैं ना।
हाँ, वो कहते हैं कि टीवी हमें नजदीकी का एक भ्रम देता है, लेकिन वो अक्सर खिलाड़ियों के असली संघर्ष, दर्द और दबाव को छुपा लेता है।
हम आराम से सोफे पर बैठकर आलोचना कर देते हैं।
हाँ, पर कोर्ट पर असल में क्या बीत रही होती है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।
इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ाव है, जैसे किसी भी चीज में बेहतर बनने की कोशिश, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, कोई हुनर हो।
हाँ, वॉलेस हमें सिखाते हैं कि नतीजा अपनी जगह है पर प्रोसेस पर ध्यान देना, दबाव सहना सीखना, लगातार प्रैक्टिस करना, ये भी उतना ही जरूरी है।
और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, स्टेज पर बोलना हो, हम सब झेलते हैं।
बिल्कुल।
तो खिलाड़ियों की जो मेंटल स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे अभी पर ध्यान देना, गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना, वो हमें भी मदद कर सकती है।
और माइकल जॉयस की कहानी, वो हमें याद दिलाती है कि सिर्फ मशहूर लोगों की नहीं बल्कि अपने आसपास के उन लोगों की मेहनत की भी कद्र करें जो चुपचाप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं।
हमारे दफ्तर में, मोहल्ले में, शायद घर में भी ऐसे माइकल जॉयस हों।
सही कहा।
और अपनी सीमाओं को मानना, जैसे एथलीट अपनी फिजिकल लिमिट जानते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी हदों का अंदाजा होना चाहिए।
और वॉलेस दिखाते हैं कि परफेक्ट ना होते हुए भी अपनी पूरी क्षमता से कोशिश करने में ही असली गरिमा है।
आखिर में रोजमर्रा की चीजों में सुंदरता ढूंढना, जैसे वॉलेस ने फेडरर के फोरहैंड में देखी।
हाँ, शायद हम किसी कारीगर के हाथ की सफाई में या किसी के खाना बनाने के तरीके में या किसी डांसर की सहजता में वही काइनेटिक ब्यूटी देख सकते हैं।
बस ध्यान से देखने की जरूरत है। मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि वॉलेस ने दिखाया कि खेल जैसे विषय पर भी कितनी गहराई से, कितने अलग अलग नजरियों से सोचा जा सकता है। ये सिर्फ स्पोर्ट्स राइटिंग नहीं है, ये लिटरेचर है, फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है। ये हमें किसी भी चीज को सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि उसकी परतों में जाकर देखने के लिए उकसाता है।
और मेरे लिए सबसे यादगार विचार ये है कि पूर्णता की वो तलाश, चाहे वो खेल में हो या जिंदगी में, मुश्किल जरूर है पर वो इंसान होने का एक खूबसूरत और जरूरी हिस्सा है।
अपनी सीमाओं को जानना और फिर उन्हें थोड़ा और आगे धकेलने की कोशिश करना।
हाँ, ये किताब सिर्फ टेनिस देखने का नहीं, शायद दुनिया को देखने का नजरिया भी थोड़ा बदल देती है। नतीजों की रेस से परे मानवीय संघर्ष, कला और जज्बे की तारीफ करना सिखाती है।
अब सवाल ये है कि हम अपने आसपास किन फेडरर मोमेंट्स या माइकल जॉयस संघर्षों को देखने से चूक रहे हैं।
सोचने वाली बात है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकित्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।